केरल में तिरंगा फहराने पर उस वक्त बवाल मच गया जब पालक्कड़ के जिला कलेक्टर ने जिले के सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए निर्देश जारी किए कि प्रबंधन इस बात का ख्याल रखे कि आरएसएस नेता मोहन भागवत को परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत न दी जाए। मोहन भागवत ने राज्य के आदेश की अवहेलना करते हुए तिरंगा फहराया। सूत्रों ने बताया कि आदेश को न मानने के चलते भागवत के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जा सकती है।
माननीय मोहन भागवत जी ने एक विद्यालय में झंडोत्तोलन किया। विद्यालय प्रशासन ने जिलाधीश के उस निर्देश को कि कोई स्कूल का ही अधिकारी झंडोत्तोलन करे नहीं माना और बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस विद्यालय में। संघ के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में उपस्थित थे, झंडोत्तोलन हुआ।
भागवत के इस कदम ने वाम पार्टी और संघ परिवार के बीच शब्द बाण का युद्ध शुरू कर दिया है। वाम दल और आरएसएस दोनों एक दूसरे पर नौकरशाही के राजनीतिकरण और वैचारिक असहिष्णुता का इल्जाम लगा रहे हैं।
Instead of observing 70th anniversary of India with a feeling of patriotism, he wanted to just bring partisan politics into it. And how can he go to a state, talk about good governance at the center, and in the state try and break the rules of the state government?
Mohan Bhagwat aaj pure desh aur duniya mein jis sangathan ke mukhiya hain pure jeevan ko rashtra ke naam par samarpit kar diya hai, ye Kerala sarkar wahan ke adhikariyon ka bhi rajnitikaran kar diya hai, ye ochhi rajneeti।
पालक्कड़ जिले के कलेक्टर की सिलेक्टिव रूल बुक से उस वक्त पर्दा उठा जब कांग्रेस नेता को झंडा फहराने की इजाजत दी गई, जबकि मोहन भागवत को सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोक दिया गया था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 से ज्यादा बच्चों की मौत होने के बाद मृतकों के माता पिता ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। एक अभिभावक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हुए आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने मृत बच्चों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया और अभिभावकों को अपने बच्चों के मृत शरीर लेने की भी अनुमति नहीं दी गई। 13 साल पुराने कुंभकोणम अग्निकांड में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को रिहा करने के फैसले के बाद तमिलनाडु के कानून मंत्री ने कहा है कि वो फैसले पर गौर करेंगे और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श के बाद जरूरी कदम उठाएंगे। इस हादसे में 94 निर्दोष बच्चों की मौत हो गई थी। बॉलीवुड एक्टर कमल हासन ट्विटर पर तमिलनाडु सरकार पर बरसते दिखे। उन्होंने हैरानी जताई कि स्टेट कैबिनेट पर लगे भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों के बाद भी कोई चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहा है। राज्य में अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बेहतर तमिलनाडु का निर्माण करना था। मलयालम अभिनेत्री का चलती कार में अपहरण और उस पर हमला किए जाने की घटना पर एमएलए पीसी जॉर्ज की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। महिला ने पीसी जॉर्ज पर हमला बोलते हुए कहा कि हादसे के अगले दिन वो शूट पर नहीं जा पाई। चंडीगढ़ में आजादी के दिन 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की लड़की के साथ उसके स्कूल के पास एक पार्क में यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। 40 साल का आरोपी लड़की को जबरन पार्क में ले गया और उत्पीड़न करने के बाद वहां से भाग गया। हादसे के बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करने के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इस ऑपरेशन को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन में देश पर हर जगह से हमले हुए, फिर चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा हो या चीन के। कर्नाटक सरकार द्वारा पब्लिक स्पेस पर इंदिरा कैंटीन बनाए जाने को लेकर सामने आए विरोध के बाद कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी शहर में एक और कैंटीन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसमें सभी को मुफ्त लंच दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक की पहचान पीएफआई के अध्यक्ष के रूप में हुई है। आईजीपी वेस्टर्न रेंज के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। डोकलाम में भारत चीन के दरमियान चल रहे गतिरोध के बीच इंडियन ओशन में चीनी पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ रही है। 22 अप्रैल को एक युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भारतीय महासागर में देखा गया। बंगाल के बीरभूम जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये एक शरारत है। इस सिलसिले में जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना में कोई भी सीसीटीवी फुटेज हाथ नहीं लगी है। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में 24 साल के एक बाइक सवार की बाइक पर से नियंत्रण खोने और लेडी इरविन कॉलेज की दीवार से टकराने से मौत हो गई। मृतक अपने दो दोस्तों के साथ तेज गति से बाइक चलाते हुए अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसकी टक्कर सड़क पार कर रहे बुजुर्ग से हो गई और उसने बैलेंस खो दिया। ये पूरी घटना उसके साथी के हेलमेट में लगे गोप्रो कैमरा में कैद हुई है। बिहार में लगातार हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कम 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए स्थिति का जायजा लिया। बिहार के 13 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कटिहार से मिली रिपोर्ट के मुताबिक यहां पुल के नीचे की मिट्टी के धंसने से एक रेलवे पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। असम में आई बाढ़ में 3 और लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मरने वालों का आंकड़ा 102 हो गया है। इस साल बाढ़ से 32 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। प्रशासन के खराब प्रबंधन की वजह से क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में पुलिस की बर्बरता कैमरे में कैद हुई है, जिसमें पुलिसकर्मी हाईवे पर जांच के नाम पर एक पुरुष और महिला को मारते दिखे। पुलिस ने हाईवे पर कुछ लोगों को कथित तौर पर शराब पीते पकड़ा, जिसके बाद महिलाओं के जांच में दखल देने के बाद वहां हाथापाई शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस दुर्घटना कैमरे में कैद हो गई। बस के गहरे खाई में जा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। श्रीनगर में 15 अगस्त के मौके पर एक कश्मीरी महिला ने लाल चौक में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। महिला के मुताबिक भारतीय नागरिक के रूप में ये उनका कर्तव्य था। पुलिस ने महिला को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए। ओडिशा में धमरा बंदरगाह में मजदूरों के ऊपर कोयले का ढेर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। हादसे से नाराज मजदूरों ने 3 कार्यालयों के अलावा बंदरगाह के मुख्य द्वार को भी जला दिया।
गूगल प्ले और एप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।